lagi na yun. Hey, Prabhu. Hey, Ishwar. Hey, Bhagwan. मैं इतने दिन से पूरे जीवन में तेरा व्रत रखती आ रही हूँ। हे प्रभु, इस समय मैं बहुत कष्ट में हूँ। आप आकर मेरी इन कष्टों को दूर करें भगवान।
करता हूं अकाया अर्थात जिसका कोई आकार ना हो। मैं अकाल मूर्त, कालों का काल, महाकाल भी मैं ही हूं। मुझे काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति का रास्ता बताता हूं। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं।
कौन? सृष्टि का रचयिता? भगवान? पर कहां? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है।
हां, तुम मुझे और मेरे सत्य रूप को नहीं जानती हो। मैं इन आंखों से देखने में नहीं आता हूं। मैं देहधारी नहीं, मैं निराकार हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं, क्योंकि मैं ही देवताओं, मनुष्यों, पांचों तत्वों, सारी सृष्टि का रचयिता हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं सबका दुख हरता, सुख करता हूं। मैं निराकार हूं, सर्व आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा हूं।
आत्माओं का बाप, निराकार? मैं समझ नहीं पा रही हूं प्रभु, मुझे समझाओ।
बच्ची, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप आत्मा है। ये भौतिक शरीर नहीं, और आत्मा निराकार है, एक बिंदु प्रकाश पुंज के समान। आत्मा भौतिक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, एक चैतन्य शक्ति है। जितने मनुष्य हैं, उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के भौतिक शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं, पर आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को केवल दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, परंतु आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ हर आत्मा की भूमिका भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा का रूप एक ही है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती है। मैं सर्व आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा हूं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ही है। जैसे आत्मा बिंदी, वैसे मैं परमात्मा भी बिंदु के समान अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज निराकार हूं। तुम भक्ति में मेरी ज्योतिर्बिंदु रूप की यादगार शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो। बच्ची, आप सभी मेरी ही संतान हो। आप मेरे ही घर से यहां आए हो। इस सूर्य और सितारों से दूर, ये फरिश्तों का सूक्ष्म लोक है। इससे भी दूर एक अन्य लोक है जहां आत्माएं विदेही, क्रिया रहित, विचार रहित तथा शांत अवस्था में निवास करते हो। ये लोग मुझ परमात्मा और आप आत्माओं का लोक है जिसे आप सब ब्रह्म लोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम आदि नामों से जानते आए हो। आप सभी आत्माएं पृथ्वी पर इसी लोक से गए हो। ये लोक आत्माओं का प्यारा घर है। ये पृथ्वी एक रंगमंच है जहां आप आत्माएं देह रूपी वस्त्र को धारण कर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं। अब अपने आप को एक अविनाशी आत्मा समझ। मुझ परम प्रिय परम पिता परमात्मा को इस घर में याद करो।
परंतु लोग तो कहते हैं कि आत्मा ही तो परमात्मा है।
नहीं मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम सब आत्माएं तो मुझ परमात्मा की संतान हो। परमात्मा एक है, फिर तुम अपने आप को परमात्मा कैसे कहला सकते हो? शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही तुम सब ना समझ बन गए हो। मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। आत्मा सो परमात्मा ये कहना अज्ञानता की निशानी है। अपने को भगवान कहना परमात्मा की ज्ञानी है। जब भी तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। जब जब कलयुग के अंत में सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानी हो जाती है तो मैं अधर्म का विनाश कर सत धर्म की स्थापना करने इस धरा पर आता हूं।
हे प्रभु, परंतु आप तो सर्वव्यापी हैं।
बच्ची, अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो तीर्थों पर, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर जाने की क्या आवश्यकता है? तुम सब यज्ञ, जप, तप आदि करते हो, समझते हो यही परमात्मा से मिलने का रास्ता है। अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो मुझे पाने के लिए यज्ञ, जप, तप क्यों करते हो? मैं हरेक में नहीं, मेरी याद हरेक में व्याप्त है, क्योंकि मैं ही सब आत्माओं का पिता हूं। तुम सब कहते हो कि मैं कण कण में व्याप्त हूं। नहीं बच्चे, कण कण मेरी रचना है। अपने पिता को सर्वव्यापी कहना एक बहुत बड़ी भूल है।
हे परमपिता, मैं आपको किस नाम से संबोधित कर सकती हूँ?
बच्ची, मुझे सभी प्यार से शिव बाबा कहकर बुलाते हैं, तुम बाबा कह सकती हो।
बाबा, प्यारे बाबा, आपके कर्तव्य क्या है?
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। मैं पतित सृष्टि को संपूर्ण पावन बनाता हूं जब मनुष्य आत्माएं दुर्गति को प्राप्त हो जाती है, तब मैं आकर सदगति कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताता हूं। मुझे भोला भंडारी शिव भी कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला, पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने में आता हूं। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तब मेरा अलौकिक दिव्य जन्म भारत में होता है, जिसे तुम सब शिव जयंती शिवरात्रि के रूप में भी मनाते हो। परंतु मेरा जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता, मैं तो कालों का काल महाकाल प्रकृति को अधीन कर अवतरित होता हूं और नई सृष्टि की रचना कर वापस अपने धाम चला जाता हूं। बच्ची, अब परिवर्तन का समय आ चुका है। यही समय है जब सब मुझसे मिल सकते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम। इस संगम युग की आयु बहुत छोटी है। ये बहुत शुभ मंगलकारी समय है। बच्ची, अभी मैं अवतरित होकर राजयोग सिखा रहा हूं।
जब आप धरती पर आ चुके हैं तो हम सब इतने कष्ट में क्यों हैं? प्रभु, मैंने और मेरे पति ने पूरे जीवन में कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, फिर भी इतने कष्ट क्यों हैं? प्रभु,
बच्ची, कलयुग के अंत में तुम सब श्रेष्ठ और सत्य कर्म को भूल जाते हो। तुम्हारे कर्म ही इन कष्टों का कारण है। इसलिए मैं ईश्वर ही सत्य और श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देकर पूरे विश्व का दुख दूर करने आया हूं।
पर बाबा, इन कष्टों से छुटकारा कैसे पाऊं?
हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। कष्टों से मुक्त होने का एक ही साधन है, राजयोग।
बाबा, ये राजयोग क्या है?
बच्ची, मुझे याद करना ही राजयोग है। ये वही भारत का प्राचीन योग है जिसकी बहुत महिमा है। राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अपने को बिंदु रूप आत्मा समझ मुझ ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को याद करना ही राजयोग है। राजयोग का अर्थ है याद। बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करना।
बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे ज्ञान से परिपूर्ण कर जो कृपा की है, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। बाबा, आपने मेरे जीवन की सभी दुविधाओं को दूर कर दिया। बाबा, मैं नित्य अपने अविनाशी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आपको याद कर अपना जीवन दिव्य बनाऊंगी। बाबा, आपका बहुत बहुत आभार मेरे बाबा।
अच्छा बच्ची, हम फिर मिलेंगे।
व्यक्ति, समाज और देश का विकास शिक्षा पर निर्भर होता है। यदि भौतिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, तभी संपूर्ण राष्ट्र का सकारात्मक उत्थान संभव है। इसी लक्ष्य को साकार रूप प्रदान कर रहा है ब्रह्म कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का शिक्षा प्रभाग। शिक्षा प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जाता रहा है। वर्ष 2023-24 में हुई सेवाओं की झलकियां कुछ इस प्रकार है। 22 नवंबर 2023 को संबलपुर में शिक्षा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर ओडिशा के माननीय राज्यपाल श्री रघुवर दास जी तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उपस्थित रहे। प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन विषय पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 450 से अधिक शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में 14 वाइस चांसलर, डीन, कॉलेज प्रिंसिपल्स आदि उपस्थित रहे। जून मास में शांतिवन परिसर में राजयोगी किड्स समर कार्निवल का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 1200 से अधिक नन्हे विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्निवल में बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ मेडिटेशन और योगा भी सिखाया गया तथा अनेक प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रभाग द्वारा मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मूल्य एवं आध्यात्म में पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसमें युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों ने उमंग उत्साह के साथ प्रवेश लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा, मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ हरि कुमार, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी मदुरई के योगा स्टडीज डिपार्टमेंट के निदेशक डॉ सुरेश कुमार, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष डॉ ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रभाग द्वारा मनमोहिनी वन परिसर में राजयोग ट्रेनिंग एवं भट्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक पीके भाई बहनों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग में माइंड मैनेजमेंट, डिजिटल डिटॉक्स, हैप्पी लाइफ, क्रिएटिव मेडिटेशन आदि विषयों पर सत्र लिए गए। मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी और राजयोगिनी जयंती दीदी जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा गया। इसी कार्यक्रम में नेपाल की राजयोगिनी राज दीदी जी, दिल्ली हरिनगर की राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी तथा अमेरिका के ब्रह्म कुमार पवन भाई को भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आयोजित श्रीमद् भगवत गीता एक जीवन संदेश कार्यक्रम में राजयोगी भ्राता डॉक्टर मृत्युंजय जी को समाज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 अगस्त 2023 को ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड हॉल में शिक्षा प्रभाग के राइज एजुकेशन कैंपेन का संतों ने शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या से आए जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर महंत गिरीश दास महाराज, महामंडलेश्वर महंत आशुतोष महाराज, श्री हनुमान गढ़ी के पीठाधीश्वर महंत बलराम दास महाराज आदि संत उपस्थित रहे। इस अभियान के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में श्री पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रीहरि होनवाड, नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर श्री प्रेम रथ, खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शशि मोरोलिया इत्यादि उपस्थित रहे। इसी प्रकार 21 फरवरी 2024 को ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 350 से अधिक शिक्षाविदों ने शिरकत की। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों जैसे AICTE के चेयरमैन, भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री, UGC के चेयरमैन तथा JNU, जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपतियों से विशेष मुलाकात की गई। साथ ही नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों के लिए डॉक्टर मोहित गुप्ता द्वारा टॉक रखा गया था और मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। शिक्षा प्रभाग द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए राजयोगी किड्स ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आध्यात्मिक क्लासेस तथा कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं। इसी प्रकार वयस्कों के लिए प्रत्येक रविवार को जीवन हो तो ऐसा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में युवा विद्यार्थियों के लिए भी प्रति रविवार शाम को पावर टॉक ऑनलाइन वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। इन ऑनलाइन वेबिनार से हजारों भाई बहनों को अपने जीवन को श्रेष्ठ और गुणवान बनाने की प्रेरणा मिली है। इन सभी कार्यक्रमों के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में शिक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का यह शिक्षा प्रभाग मूल्य शिक्षा के माध्यम से ईश्वरीय कार्य में निरंतर सेवारत है। ओम शांति।
से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका इस शांति वन के परिसर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप एक ऐसे परिसर में आए हैं जिसका वातावरण दिव्य, अलौकिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और आप सब इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि एक ऐसी परिसर है जहां चारों तरफ दिव्यता, रूहानियत और उस सकारात्मकता का ही प्रभाव पड़ रहा है। तो आज आप सब विशेष इस टीचर्स कॉन्फ्रेंस, एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पिरिचुअल एजुकेशन, फॉर हेल्दी एंड एम्पावर्ड भारत, इस विषय को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज का जो दिन है, आज के दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन की शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आप सब शिक्षा से जुड़े हुए वो शिक्षक बैठे हैं और आज आप सब शिक्षकों ने भी अपने शिक्षक को जरूर याद किया होगा जिन्होंने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं कि माँ के बाद अगर कोई गुरु, अगर कोई सिखाने वाला होता है वो शिक्षक होता है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसको सजाता है, ऐसे हमारे शिक्षक जो हमारे बच्चे हैं उनको अध्यात्म के साथ, मूल्यों के साथ सजाते हैं। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत मुबारक हो और हम चाहेंगे कि आप हमारे भारत को, पूरे विश्व को, जो वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, उसको ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व जो हमारे आज के वक्ता हैं आदरणीय रूपेश भाई जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सब उनका स्वागत कैसे करेंगे? तालियों के साथ। तो रूपेश भाई जी हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, तो हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से भाई साहब का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में भारत भूषण भाई जी, जो कि विशेष सोनीपत से आए हैं, तो उनसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि वो स्टेज पर आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें और आप भी उनका तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में जो हमारे वक्तागण हैं उनका बुके के द्वारा, बैजेस के द्वारा स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे मधुबन की शान, मधुबन की शान हम कहें, हमारा मधुर वाणी ग्रुप, जैसे दुनिया में कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम संगीत के बिना अधूरा होता है। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे भरत भूषण भाई जी, जो विशेष पानीपत से आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं तालियां भी एक एक्सरसाइज है जो मन और तन को स्वस्थ रखता है। और हमारे रूपेश भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत हो रहा है। हमारे मधुबन की शान, हमारा मधुर वाणी ग्रुप, आप सबके स्वागत से, स्वागत के लिए एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले आपका स्वागत बारिश ने किया, लेकिन अभी शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे हमारा मधुर वाणी ग्रुप। और इस मधुर वाणी ग्रुप के लिए जोरदार तालियों से हम पहले इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज आप सब शिक्षकों के स्वागत के लिए एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। और गीत के बोल हैं, शिक्षक दिवस पर आए शिक्षक, मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। फिर सजा है शांति वन का ये सुंदर संसार। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का स्वागत सौ सौ बार अभिनंदन बारंबार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार कर लें।
भारत के लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आध्यात्म जगत में आइए। स्वस्थ सशक्त भारत के लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आध्यात्म जगत में आइए। भारत का स्वर्णिम भविष्य आध्यात्मिकता लाइए। शिक्षकों शिक्षक दिवस पर सादर स्वागत आइए, स्वस्थ सशक्त भारत के लिए।
आपकी तालियां आपकी खुशी का इजहार है।
आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से ही होगी सुख शांति और पवित्रता। आज की आवश्यकता है सब में हो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से ही होगी सुख शांति और पवित्रता। अध्यात्म के परम स्रोत से, अध्यात्म के परम स्रोत से मिलिए और मिलाइए। भारत का स्वर्णिम भविष्य हो आध्यात्मिकता लाइए। शिक्षकों शिक्षक दिवस पर सादर स्वागत आइए, स्वस्थ सशक्त भारत के लिए। ऐसी शिक्षा ऐसा शिक्षालय कहाँ, विश्व को जो दे बदल वो विश्वविद्यालय यहाँ। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, राजयोग अपनाइए। भारत का स्वर्णिम भविष्य हो आध्यात्मिकता लाइए। शिक्षक दिवस पर सादर स्वागत आइए, स्वस्थ सशक्त भारत के लिए।
गरी गरी गप गरी गप रे गप धा गा पा गा सा धा पा रे सा,
गरी गरी गप गरी गप रे गप धा पा गा सा धा पा रे सा। हम
हम खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं, भगवान आए वो आते हैं, भारत का भाग्य जगाते हैं।
हम खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं, भगवान आए वो आते हैं, भारत का भाग्य जगाते हैं।
विश्व शांति का अग्रदूत हो,
विश्व शांति का अग्रदूत, प्यारे भारत को बनाइए, भारत का स्वर्णिम भविष्य हो, आध्यात्मिकता लाइए, शिक्षकों शिक्षक दिवस पर सादर स्वागत आइए, स्वस्थ सशक्त भारत के लिए आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आध्यात्म जगत में आइए, भारत का स्वर्णिम भविष्य हो, आध्यात्मिकता लाइए, शिक्षकों शिक्षक दिवस पर सादर स्वागत आइए,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम मधुर वाणी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों के साथ आप सबका स्वागत किया। और इस गीत में एक बहुत सुंदर लाइन थी, अध्यात्म शिक्षा के लिए अध्यात्म जगत में आइए। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि एक मंदिर मूर्ति के बिना अधूरा होता है, ऐसे ही हमारा जीवन आज अध्यात्म के बिना अधूरा है। भला आज हम कितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील आदि बनते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उस सुख की, उस शांति की, उस अध्यात्म की चाहना है। तो हम ये आशा रखते हैं कि अगले आप 3 दिन में उसको जरूर यहाँ से अपने में भरकर जाएं, और सिर्फ भरकर नहीं जाएं, और जहाँ पर भी आप जाएं वो दूसरों को दें, क्योंकि आप भी एक ऐसे विद्यालय में बैठे हैं जहां हमें रोज वो शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम अपने जीवन को उस सुख से, शांति से, आनंद से, अध्यात्म से भरपूर कर सकें। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका नारा ही है, स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। अगर मुझे एक सशक्त भारत बनाना है तो उसके लिए मुझे स्वयं को पहले सशक्त बनाना होगा। तो आइए, अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय रूपेश भाई जी उपस्थित हैं, जो बचपन से ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही एक खोज थी कि मुझे अध्यात्म से जुड़ना है, और वो बचपन से ही इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए हमारा ज्ञान सरोवर एकेडमी, जो कि माउंट पर है, जो आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद देखने भी जाएंगे, आप पिछले लगभग 25 वर्षों से वहां पर रहकर अपने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राज योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विंग्स हैं। आप विशेष पार्क विंग और यूथ विंग के फैकल्टी मेंबर भी हैं, और आप सब विशेष हमारा एक टीवी पर चैनल आता है, पीस ऑफ माइंड चैनल, आप सब देखते भी होंगे। उसमें 3 बहुत पॉपुलर शोज आते हैं, एक मुलाकात, छूले आसमान, समाधान जैसे शोज में आप एंकर भी करते हैं। तो मैं अभी रुपेश भाई जी से अनुरोध करूंगी कि इन 3 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, उस अध्यात्म का, उस मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम रुपेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करेंगे हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं।
ओम शांति। सभी प्यार से एक बार बोलें ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप आए हैं यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज गुरुवार है, आप सभी का दिल से अभिनंदन बारंबार है, बारंबार है, बारंबार है। आज संयोग से गुरुवार भी है और आज गुरुओं का ही वार है, अर्थात शिक्षक दिवस। तो आप सभी शिक्षक, सभी गुरुजन सम्मुख बैठे हुए हैं, तो आप सबको नमन करता हूं क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। शिक्षक को किसी ने बहुत सुंदरता से परिभाषित किया है, किसी छात्र ने, शिक्षक वो जो शिखर की ओर ले जाता है, क्षमा जो हमें क्षमा कर देता है और जो हमारी कमजोरियों को दूर करता है। ऐसे शिक्षक हैं आप सभी, जो छात्रों की कमजोरियों को दूर करने वाले, उन्हें क्षमा करके शिखर की ओर ले चलने वाले, एक ऐसी मोमबत्ती जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। हर छात्र कहीं पे भी हो, जीवन के अंत तक अपने शिक्षकों को बहुत हृदय से याद करता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, क्योंकि आप उनके जीवन को गढ़ते हैं, उन्हें तराशते हैं, उन्हें सुंदर मूर्ति बनाते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई ना, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेवारी शिक्षकों की है। सर्वोत्तम प्रोफेशन जो है वो शिक्षकों का है, जो छात्रों को गढ़ते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आप जैसा गढ़ेंगे वैसा ही राष्ट्र होगा, आने वाला कल होगा। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बात कही थी कि राष्ट्र का निर्माण संसद में नहीं लेकिन क्लासरूम में होता है। राष्ट्र का निर्माण वहां होता है। तो क्लासरूम में जहां छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं, उन सब के भविष्य के निर्माण का कर्तव्य आपका है। और जैसे वो गढ़ते हैं, जैसे वो बनते हैं, वैसा ही राष्ट्र होता है। तो जिम्मेवारी कितनी बड़ी है आपकी, है ना। और ऐसी सुंदर जिम्मेवारी के कारण ही ये सुंदर कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय ही ये रखा गया कि हम कैसे हेल्दी और कैसे एक सशक्त भारत का निर्माण करें और उसके लिए क्या विशेष किया जाए। हम सबके हृदय में अपने राष्ट्र के लिए बहुत श्रद्धा है, सम्मान है, प्यार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि कहा जाता है। हमारी मातृभूमि, उसके लिए हम क्या ना कर जाएं, वो हृदय में हमेशा एक सुंदर और श्रेष्ठ भावना रहती है आपके, और आप अपनी भावना को छात्रों तक पहुंचाते हैं। हमारा ये देश कितना विशेष, कितना महान, कितना श्रेष्ठ रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी यहां कई बार आए, और जब पहली बार आए वो भी एक शिक्षक थे, राष्ट्रपति बनने से पूर्व, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो, उन्होंने शिक्षण का कार्य इतना उन्हें प्रिय था कि विद्यार्थियों से जहां भी जाते थे मिलते थे। तो जब वो पहली बार यहां आए तो मुझे याद है दादी जी से उन्होंने एक प्रश्न किया था, दादी प्रकाशमणि जी जो इस विश्वविद्यालय की चीफ थी, उन्होंने पूछा कि दादी एक चीज मेरी समझ में नहीं आई अभी तक कि भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, इतना विशाल राष्ट्र है, लेकिन इस विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र पर छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से देशों ने वार किया, इसे लूटा खसोटा, लेकिन भारत ने कभी किसी पर सामने से आक्रमण नहीं किया जबकि वो सशक्त था, द जबकि हमारे योद्धा कम नहीं थे, ऐसा क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो दादी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बहुत गहन जवाब है। दादी ने कहा, भारत मां है और मां कभी भी बच्चे पर आक्रमण नहीं करते हैं, इसीलिए हम भारत माता कहते हैं। भारत यद्यपि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन फिर भी हम भारत माता की जय कहते हैं। कभी भी हमने ऑस्ट्रेलिया माता की जय, अफगानिस्तान माता की जय, चेकोस्लोवाकिया माता की जय, ऐसा हमने कभी नहीं सुना, राइट? लेकिन हमने बचपन से सुना, क्या सुना और कहा, तो आवाज आनी चाहिए सभा से, भारत माता की, भारत माता की, ये हमने बचपन से सुना और कहा है। ऐसे ही नहीं कहा, लेकिन सचमुच हमारी ये समृद्ध संस्कृति रही है, समृद्ध विरासत रही है, इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा है। विदेशों से हमारे यहां बहुत सारे भाई बहने आते हैं और उनमें से कई ये कहते हैं, हमारे देश में ये मान्यता है कि यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। ये सुनकर मेरा सीना तो गर्व से बिल्कुल चौड़ा हो गया, आप भी उस गर्व को महसूस कर रहे होंगे। लोग ये कहते हैं, ये पुण्य भूमि है, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो भारत में तुम्हारा जन्म होगा। ऐसी हमारी भूमि, मातृभूमि। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो थोड़ी सी निराशा अवश्य होती है, लेकिन निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंधकार है तो प्रकाश भी है। और यदि ऐसे सपूत भारत के लाल, इतने सारे जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की जिम्मेवारी ली हुई है, यदि वो सब मजबूत हो जाएं, सशक्त हो जाएं और ये बीड़ा अपने कंधे पर उठा लें, तो क्या पुनः स्वर्णिम भारत बनाना, क्या पुनः हेल्दी और एम्पावर्ड भारत बनाना मुश्किल है? मुश्किल है? मुश्किल है? हाँ या ना? ना, ना। हम में से एक एक आज ये संकल्प लें कि हम यहां जिस उद्देश्य से आए हैं, मातृभूमि का भी एक ऋण होता है, ये तो आप सबको सिखाते और पढ़ाते हैं, माँ का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, मातृभूमि का भी ऋण है, और वो ऋण हम सबको चुकाना है। और इसकी शुरुआत मुझे स्वयं से करनी है, स्वयं से हम ये सुंदर उद्देश्य ले लें, क्योंकि आज भागम भाग में हम कहीं ना कहीं अपने सुख, अपनी शांति, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को थोड़ा पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वो छूट गई हैं। जैसे लेमन स्पून इन माउथ एक गेम होता है बच्चों का, एक बच्चा बहुत तेजी से भागा और सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन वो विनर नहीं था, वो टॉप में वैसे पहले पहुंचा था लेकिन वो विनर नहीं था। क्यों? क्यों? सबसे पहले पहुंचा लेकिन फिर भी विनर क्यों नहीं था? क्योंकि उसका नींबू गिर गया था। जब अनाउंस हुआ कि विनर ये है, तो उसने रोते हुए अपने जो भी टीचर वहां थे, उन्होंने कहा, पहले तो मैं पहुंचा था, तो विनर तो मैं हूं। तो टीचर ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा पहले तो तू पहुंचा, लेकिन तेरा नींबू जिसके साथ तुझे पहुंचना था वो गिर गया था। तो हम सब भागम भागी में भौतिकता का तो बहुत ज्यादा विकास, जीवन में आज सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, हर प्रकार के सेट है, लेकिन बस माइंड अपसेट है, जीवन अपसेट है। क्यों? उसी प्रश्न की एक खोज हम यत्र तत्र सर्वत्र करते रहते हैं कि यहां से शांति मिल जाए, यहां से खुशी मिल जाए, यहां से सुकून मिल जाए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो जो खोज आपकी है, उस सुख की, उस शांति की, उस आनंद की, वो खोज आपकी यहां पूर्ण हो जाएगी अगले 3 दिनों में। ये तलाश व्यक्तिगत रूप से मेरी भी थी कि कहां ये चीज मिले, और जब मैं यहां आया तो देखा कि यहां तो ये सबके जीवन में है, यहां हर एक प्रसन्न है, हर एक आनंदित है, सुकून में है, हर एक के चेहरे पर एक मुस्कान है। आप भी यार आज आए हो या कल आए हो, आप ये देख रहे होंगे, और अगले 3 दिनों तक मैं आपसे ये जरूर अनुरोध करूंगा कि यहां तो बैठकर सारे सेशंस आप अटेंड जरूर करें, लेकिन जब भी आपको वक्त मिलता है आप बाहर जाते हैं, बाहर मतलब इस कैंपस में घूमते हैं, डाइनिंग में जाते हैं, भोजनालय में जाते हैं, हमारे अन्य जो समर्पित और सेवा में अन्य भाई बहने हैं उनसे जरूर मिलें, देखें उन्हें, उन्हें पूछें कि उन्हें यहां क्या मिला। वो अनुभव जो वो सुनाएंगे वो भी आपकी बहुत बड़ी संपदा होगी, क्योंकि अनुभव कभी झूठा नहीं होता। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहां ये सत्य आप जरूर अनुभूत करके जाइएगा, क्योंकि यही हमारी सच्ची संपदा है जिसकी हमें तलाश है, और ये अवश्य आपको मिलेगा। किस चीज का अभाव है या क्यों हम उससे दूर हैं, थोड़ा हम चिंतन को और गहराई की ओर लिए चलें। आप सब चिंतनशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबके साथ तो हम वक्त बिताते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, और उससे भी ज्यादा मोबाइल के साथ। लेकिन क्या हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं? हम सबके साथ रहते हैं, सबको देखते हैं। यदि अभी भी मैं आपको कहूं कि इस हॉल में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है, तो आप पूरे हॉल पर नजर डालेंगे और क्रम से बताना शुरू कर देंगे कि यहां की ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही है। लेकिन ईमानदारी से बताएं कि क्या उसमें मेरा भी नाम होगा? कि इस हॉल में सबसे सुंदर मैं हूं, ये अभिमान नहीं है, ये अभिमान नहीं है, लेकिन ये एक स्वमान है, स्वाभिमान है, स्वयं की एक सुंदर पहचान है। सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने आप को इसलिए ज्यादा महत्व नहीं देता, इसलिए अपने आप को, अपनी विशेषताओं और योग्यताओं को नहीं जान और समझ पाता, क्योंकि खुद को देखता ही नहीं। कस्तूरी मृग की तरह मेरी स्थिति है। अंदर खुशी है, अंदर शांति है, अंदर आनंद है, सब कुछ, लेकिन तलाश बाहर की ओर। इसलिए एक अनुरोध आप सबसे अवश्य होगा, एक अनुरोध, अनेक अनुरोध मैं करूंगा, क्योंकि इस पूरे 3 दिन में आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं वो इस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं। एक अनुरोध, अपने साथ वक्त बिताएं, अपने आप को वक्त दें। जो चिंतन यहां से मिल रहा है उस चिंतन की धारा पर बहें, उस चिंतन पर चिंतन करें, और सचमुच जिस उद्देश्य से हम यहां आए हैं उस उद्देश्य की कैसे पूर्ति मेरे माध्यम से होगी, मैं इसके लिए क्या करूं, ये जिम्मेवारी मैं खुद उठाऊं, औरों को ना देखूं दूसरे क्या कर रहे हैं, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। एक अकेला व्यक्ति इतिहास बना देता है, एक अकेला व्यक्ति परिवर्तन लेकर आता है। इतिहास उठाकर हम देख लें, क्या वो एक मैं नहीं हो सकता? मुझे होना है, और इसके लिए मुझे स्वयं में आना है, स्वयं को देखना है। मैं विश्व की बात बाद में करूंगा, व्यक्ति से समष्टि होती है, व्यक्ति से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होगा। जिस राष्ट्र की मैं कल्पना कर रहा हूं, जिस राष्ट्र का मैं स्वप्न देख रहा हूं, हम सब मिलकर स्वप्न देख रहे हैं, उसकी शुरुआत व्यक्ति से होगी, मुझसे होगी। क्या यह संकल्प हम ले सकते हैं? कौन कौन ये कर सकता है? मैं आपके हाथ देखना चाहूंगा प्लीज। कौन कौन ये चाहेगा? बहुत सुंदर, हृदय में बिल्कुल खुशी हुई, आनंद हुआ, और चाहूंगा कि एक बार अपने लिए जोरदार जरूर तालियां बजा लें, क्योंकि जो जिम्मेवारी उठाता है वो साहसी है, वो वीर है, वो त्यागी है, वो बलिदानी है। वो ये नहीं देखता कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो आनंद ले रहे हैं, मैं भी क्यों ना आनंद लूं। नहीं, धारा के साथ बहना महानता महावीरता नहीं है, धारा के प्रतिकूल बहना वो महानता है। कहते हैं डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बिहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास ना जाएं, धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया इतिहास रचे हम, एक नया विश्वास रचे हम। तो आज इतिहास रचने का दिन, विश्वास रचने का दिन, खुद पर मुझे विश्वास है और सबको मुझ पर विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो शुरुआत खुद से। एक बार 200 विद्यार्थियों का एक झुंड घूमने के लिए निकला। उन्होंने तय किया कि हम अलग अलग मार्गों से होकर तय स्थान पर पहुंचेंगे। छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए, अलग अलग मार्गों से होकर के वो तय स्थान पर पहुंचने लगे। जब सभी पहुंच गए तो उनका जो लीडर था उसने सोचा कि 200 लोग हैं, कोई छूट छाट तो नहीं गया, एक बार काउंट कर लेते हैं। सबको काउंट किया लेकिन अपने आप को काउंट नहीं किया। तो कितने हुए? 199। अरे एक कहां रह गया? किसी ने कहा हो सकता है तुमसे गिनने में गलती हो गई हो, मैं काउंट करता हूं। उसने भी काउंट किया लेकिन अपने आप को काउंट नहीं किया। कहा अरे 199 ही है, सचमुच कोई मिसिंग है। तीसरा आया, उसने भी काउंट किया, उसने भी यही किया। कहा कि 199 ही है, एक कहां रह गया, ढूंढो ढूंढो उसको। उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? एक वृद्ध उधर से गुजर रहे थे, उन्हें लगा कि इनसे हम पूछ लेते हैं कहीं इन्होंने आते हुए देखा तो नहीं हमारे किसी साथी को। जब उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे काउंट किया है, वृद्ध समझ गए। उन्होंने कहा सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने काउंट किया, कहा अरे तुम पूरे 200 ही हो। केवल जो काउंट कर रहा है वो खुद को नहीं देख रहा है। आज हम सबको देखते हैं, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, हम ये नहीं सोचते। और ये है स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये है स्पिरिचुअल एजुकेशन जो स्वयं से शुरुआत करता है, जिसे हमारी बहन कह रही थी कि इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक वृद्ध बहुत उदास बैठा हुआ था, कुछ बच्चे आए, बोला आप इतने उदास क्यों हैं, कारण क्या है? उस वृद्ध ने कहा जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचता था बड़ा होऊंगा ना मैं सारे विश्व को बदल दूंगा, लेकिन जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं विश्व शायद मैंने ज्यादा बड़ा लक्ष्य बना लिया है, मैं देश को बदलूंगा। लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा कि नहीं देश भी बड़ी चीज हो गई, चलो मैं अपने राज्य को बदलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं राज्य भी बड़ा हो गया, डिस्ट्रिक्ट को बदल लेता हूं। और बड़ा हुआ तो लगा नहीं डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा है, परिवार को ही बदल लो। परिवार भी नहीं बदला, अब लास्ट में बुजुर्ग होके बैठा हुआ हूं और ये सोच रहा हूं काश मैंने ये सोचा होता कि मैं खुद को बदल लो। यदि मैंने खुद को बदल लिया होता तो शायद मेरे परिवर्तन को देखकर मेरे परिवार वाले बदल जाते, मेरे परिवार को देखकर शायद मोहल्ले वाले बदल जाते, डिस्ट्रिक्ट वाले बदल जाते, राज्य राष्ट्र और शायद सारा विश्व बदल जाता। मैंने गलत दिशा से शुरुआत की थी, शुरुआत तो यहां से करना था। क्योंकि जब भी आप कोई बात कहेंगे किसी को बदलने के लिए, पहले क्या कहेगा, पहले क्या कहेगा, आप बदले हैं, आप बदले हैं, आप जो बात कह रहे हैं कथनी और करनी क्या मेरी एक है, आप जो कह रहे हैं क्या वो खुद कर रहे हैं, यही कहेगा ना। इसीलिए अपने जीवन को क्यों ना हम आदर्श बना लें, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हम भी अपने जीवन को एक ऐसा संदेश बना लें। गुरुजन हैं आप, शिक्षक हैं आप, आपको देखकर विद्यार्थी सीखते हैं, हजारों लोग हजारों छात्र छात्राएं आपको देखकर बहुत शांति से ऑब्जर्व करते हैं। हमारी एक मैडम थी जो हमें पढ़ाया करते थे, हम सब कितनी भी बदमाशियां कर लें, लेकिन वो बहुत नम्रता और बहुत सम्मान से आप कह करके बात किया करते थे। इसलिए आज तक और शिक्षक थोड़े विस्मृत हो गए, लेकिन उनकी स्मृति है। हमारे एक अन्य शिक्षक, उनके घर गए तो बहुत सुंदर आध्यात्मिक श्लोक लिखे हुए थे, और क्रोधित हुआ करते थे शिक्षक, लेकिन वो हमेशा शांत रहते थे। तब पता चला कि अध्यात्म में कितनी शक्ति है, और उन्हें देख करके सभी प्रेरित होते थे कि सर कितने शांत हैं, कितने शालीन हैं, कितने गंभीर हैं, कितने डेडिकेटेड हैं हम लोगों के एजुकेशन को लेकर, हम सबके संस्कार को लेकर। आज भी हृदय में उनकी याद है, आज भी याद है। उन्हें देखकर हमने सीखा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये करो, लेकिन उन्हें देख करके हम सीखे। ये चीज हमें अपने जीवन में लानी है। इसीलिए अपने साथ वक्त बिताते हुए अपने अंदर मुझे क्या परिवर्तन लाना है, उस परिवर्तन की ओर हमें अपने आप को लिए चलना है। विवेकानंद जी भी कहा करते थे ना, यदि आप अपने साथ वक्त नहीं बिताते तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। यह अवसर ना खोइएगा। इन तीन दिनों में आप अपने आप से भरपूर मिलिएगा, अपने साथ भरपूर समय बिताइएगा। तो तीन विशेष बातें जो हम इस पूरे कॉन्फ्रेंस में करने जा रहे हैं, शुरुआत तो हमने यहां से की। फर्स्ट, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम। आप कहेंगे कि खुद की एक जागृति तो मेरे अंदर है, क्या सचमुच है? यह बहुत गहन सा प्रश्न है, बहुत गहन सा, जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हरेक के जेहन में ये उठता है कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्या हमने खुद को जान लिया है, खुद को समझ लिया है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? यदि मैं कहता हूं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये डिजिग्नेशन है, मैं फलाने कॉलेज या फलाने यूनिवर्सिटी में इस पद पोजीशन पे हूं, क्या सचमुच मैं वो हूं या मैं कुछ और? हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार है, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। एक यंग लड़का एक गुरु के पास पहुंचा, द्वार बंद था, घोर वृष्टि हो रही थी, रात्रि का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई गुरु की, कौन है? बाहर से इस युवक ने कहा, वही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, ये मेरा प्रश्न है। और ये शाश्वत प्रश्न रहा है हम सबका। यदि आप गहराई से विचार करें, कभी ना कभी ये प्रश्न जेहन में अवश्य उठा अपने लिए। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बुद्ध ने कहा, जब वो निर्वाण की अवस्था की ओर चल रहे थे, अंतिम श्वास ले रहे थे, उनके पट्ट शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि भंते, यदि आप चले जाएंगे तो इस संसार को कौन प्रकाशित करेगा? बुद्ध जी ने कहा, आनंद, आत्मदीपो भव। यदि तुमने स्वयं को प्रकाशित कर लिया, स्वयं को जान लिया, तुम्हारे इस स्वयं को जानने से, सेल्फ अवेयरनेस से, स्वयं के प्रकाश से, यह समाज स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। तुम स्वयं को प्रकाशित कर लो। यह कोई बाह्य प्रकाश नहीं है, यह भीतर का प्रकाश है जो अध्यात्म से आता है, अध्यात्म से। तो हम स्वयं को जानने की ओर चलेंगे। यह मत सोचिएगा कि हम जानते हैं खुद को। बाहर जितना वृहद विश्व है, उससे कहीं वृहद संसार हमारे अंदर है, जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। हमारे यहां एक बहुत अच्छा शब्द है, आपने सुना होगा, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जो भीतर जाएगा वो तरेगा, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया वो प्रकाशित हो जाता है। और इसी प्रकाश की आवश्यकता है जिसकी बात मैं कह रहा था। हम सुख की, शांति की, आनंद की तलाश बाहर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर चलिए, अंदर चलिए। वो सत्य, वो आनंद अंदर है, वो प्रकाश हमारे अंदर है, अंदर चले। और साथ ही अवेयरनेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पावर। जब कभी विपदा आती है, समस्या आती है, हम किसे याद करते हैं? किसे याद करते हैं? किसे याद करते हैं? किसे याद करते हैं? कौन कौन है जो ईश्वर को याद करते हैं? विपदा आने पर ईश्वर को याद, हा? वैसे भी याद करते हैं, लेकिन विपदा के समय विशेष किसकी याद? उनकी याद। तो है ना वो, और विपदा में वो हमें मदद करते हैं। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है, जरा वो प्लीज हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर है। वही हैं जो हमारी मदद करते हैं और वही हैं जो हमारे काम आते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी सी पंक्ति कही है कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कुछ और नजर नहीं आता। सिर्फ वही नजर आता है जब कुछ और नजर नहीं आता, तो वो है ना। लेकिन हम ऐसे स्वार्थी क्यों बने हैं कि विपदा आई, बातें आई, परिस्थितियां आई, तब मैंने कहा हे प्रभु तू मदद कर। उन्होंने मदद कर दी, उसके बाद फिर से हम अपने जीवन में रत हो गए। आप जीवन का आनंद लें, यदि उनके साथ हैं तो जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। इसीलिए उन्हें जाने कि वो कौन है। क्या मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठता कि इस पूरी सृष्टि को रचने वाला, जिनके लिए मैं गाता हूं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो परमेश्वर है कौन, वो ईश्वर है कौन? बचपन से जिन्हें मैं याद कर रहा हूं, बचपन से जिन्हें मैं पुकार रहा हूं, जो मेरी मदद कर रहे हैं कौन? कहां रहते हैं? कैसे दिखते हैं? कौन कौन उन्हें देखना और मिलना चाहता है? कौन कौन है आप में से? कौन कौन? बस इतने ही, सारे नहीं। वैसे प्रश्न मेरा गलत है। कौन ऐसा नहीं होगा जो अपने उस परम पिता से, अपने उस परम शिक्षक से नहीं मिलना चाहेगा? मैं ये दावा इस मंच से आपसे करता हूं कि अगले 3 दिनों तक यदि आप स्वयं में हैं और पूरी तरह समर्पित भाव से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, आप उनकी अनुभूति यहां से करके जाएंगे। आप उनकी शक्ति, उनके आशीष को महसूस करके जाएंगे, और यही नहीं, आप उन्हें साथ लेकर यहां से जाएंगे। लेकर जाना चाहते हैं ना, या ये सोचते हैं कि नहीं, परमात्मा मंदिर तक ही ठीक है, हम अकेले अपने जीवन को एंजॉय करेंगे? ऐसा तो नहीं हा? क्योंकि यदि वो साथ रहेंगे तो ध्यान रखें, कुछ गलत नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी बात। ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और हम सब भी, जिनकी तलाश सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं, वो सत्य कौन है, कैसे हैं, उसकी अनुभूति आप यहां अवश्य करेंगे। और ये हजारों लाखों ब्रह्मावर्त जिन्हें आप यहां देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया, आप जरूर इस कैंपस का भ्रमण कीजिएगा और सबसे मिलिएगा, और आप उनसे ये प्रश्न जरूर कीजिएगा कि परमात्मा कैसे हैं। परमात्मा से आप मिले हैं तो आपको क्या अनुभूति हुई है, आप पूछ के देखिए और उनके अनुभव सुनिए, तो आपको लगेगा कि सचमुच वो इतने दूर नहीं है जितना दूर हमने समझ लिया था। वो तो हमारे हृदय के समीप हैं, वो हमारे अपने हैं, हमने ही उन्हें दूर कर दिया था, क्योंकि हम स्वयं में नहीं थे। इसीलिए कहते हैं ना, खुद में नहीं है तो खुदा भी हमसे दूर है। इसीलिए खुद में आएंगे और खुदा को जानेंगे। तो पहली बात, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड सुप्रीम। दूसरी बात, बीवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड कर्मा। Beware of your thoughts. आप सोच रहे होंगे हमने ये तो सुना था कि beware of dogs, cats, wild animals, इनसे सावधान रहो. लेकिन ये beware of thoughts and karma, ये क्या बला है? हमें सचमुच क्या अपने उन संकल्पों और कर्मों से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है जो हमें चोट पहुंचा रहे, समाज को चोट पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को चोट पहुंचा रहे हैं? विचार कीजिएगा. विचार जिन पर हम विचार नहीं करते वही हमारे जीवन के आधार हैं. प्रारंभ ही मैंने इस बात से कही थी, व्यक्ति से समष्टि. और यदि मैं व्यक्ति के रूप में अपने आप को देख रहा हूं तो मैं अपने अंदर चलूं और अपने विचारों को देखूं. हम सबको पढ़ा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को हम ये बता रहे हैं, अपने भाषणों में इस बात को इस्तेमाल करते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे. हम कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना? कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं. और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे. यदि हमने सोचा ही नहीं तो हम बनेंगे कैसे? ताजमहल पहले कहां बना? ये इतना बड़ा जो डायमंड हॉल आप देख रहे हैं पहले कहां बना? जरूर किसी के विचार में. पहले एक संकल्प, और संकल्प से फिर यह सृष्टि. तो मैं अपनी सृष्टि अपने संकल्प से बनाता हूं, अपने विचार से बनाता हूं. गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, गहराई से, क्योंकि यहां हम जीवन निर्माण के द्वारा, स्व परिवर्तन के द्वारा राष्ट्र परिवर्तन की बात करेंगे, कर रहे. यदि हम एक हेल्दी और एम्पावर्ड भारत की बात करते हैं, अपनी मातृभूमि को ऐसा बनाने की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत मेरी यहां से हो, और शुरुआत मेरे विचार से हो कि मेरा ये विचार कितना सशक्त है, कितना दृढ़ है कि मैं ऐसा सचमुच करना चाहता हूं, या ये सोचता हूं कि इसकी जिम्मेवारी किसी और की है. चलिए, राष्ट्र है उसके लिए हम करेंगे, लेकिन पहले अपना निर्माण तो कर लें. कहते हैं जैसे विचार वैसे बोल होंगे. विचार करो अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही बोल बन जाते हैं. विचार करें अपने बोल पर, क्योंकि बोल ही आपके कर्म बन जाते हैं. विचार करें अपने कर्म पर, क्योंकि कर्म ही आपकी आदत बन जाती है. विचार करें अपनी आदत पर, क्योंकि आदत ही आपके संस्कार बन जाते हैं. विचार करें अपने संस्कार पर, क्योंकि संस्कार ही आपका चरित्र बनता है. और जैसा चरित्र होता है वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपका भाग्य बन जाता है. तो एक छोटा सा विचार आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है, एक छोटा सा विचार आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है. हम छोटा कह के उसे छोड़ ना दें, वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है. उस बीज पर हम यहां ध्यान दें, कैसा सोचता हूं मैं, क्या सोचता हूं मैं. एक सर्वे ये कहता है कि 40% तो हमारे विचार बिल्कुल अननेसेसरी हैं, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहां के वहां के फालतू इमेजिनरी थॉट्स, जिनका कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से, कोई लेना देना नहीं. 40% ऑफ आवर थॉट्स, सोचिए, इमेजिनरी, काल्पनिक, कल्पना के लोक में हम जी रहे हैं. 30% हमारे पास्ट के थॉट्स, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते कि मैंने अपने जीवन में ये ना किया होता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता. इमेजिनरी थॉट्स, वे पास्ट के थॉट्स, बिल्कुल जैसे हम व्यर्थ में. 10% हमारे थॉट्स फ्यूचर के, भविष्य में क्या होगा, सर्वे है ये. 12% हमारे विचार बड़े इंटरेस्टिंग, औरों के बारे में कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दूसरों के बारे में विचार. और केवल 8% जो विचार है वो हमारे प्रेजेंट से, हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए विचार. विचार करें सारे दिन में, यदि हमारे 100 थॉट्स हैं उसमें केवल 8 थॉट्स नेसेसरी हैं अपने लिए, बाकी के सारे. अब विचार करें इससे क्या मैं स्वयं का और राष्ट्र का निर्माण कर पाऊंगा. खुद को देखना है. हम यहां आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए आए हैं. आप सभी चिंतनशील हैं, बुद्धिजीवी इसलिए जानते हैं इस बात को कि हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और क्या यथार्थ है, क्या सत्य है। हम सबको सत्य की ओर ही तो चलना है ना, सत्य की ओर। और जब ऐसा हम अपने आप का मूल्यांकन करेंगे तभी वो महसूसता आएगी जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। जब विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो कैसे हमारे विचार सुंदर हों, श्रेष्ठ हों, कैसे कर्म महान हो, उसकी सुंदर चर्चा यहां प्राप्त होगी। क्योंकि हम गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो, कई बार हम कहते हैं ना कि विचार कंट्रोल नहीं होते। आजकल ओसीडी के पेशेंट्स आपको दिखाई देंगे, डिप्रेशन के पेशेंट्स दिखाई देंगे जो अपने विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। यदि मैं अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकता, विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो विचार करें क्या औरों को कंट्रोल कर सकूंगा, क्या और मेरी बात मानेंगे। जब मेरे अपने विचार मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो और दूसरे मेरी बात कैसे मानेंगे। इसलिए शुरुआत करें अपने संकल्पों को, मुझे साधना है, वही सोचूं जो मैं सोचना चाहता हूं, वो ना सोचूं जो मैं नहीं चाहता। कौन कौन ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए? बहुत सुंदर, हमें ये करके यहां से जाना है। तो बीवेयर ऑफ योर वेस्ट इन नेगेटिव थॉट्स, कि ये कहीं मेरे भविष्य को और साथ ही साथ मेरे आने वाले कल, मेरी जो भी प्लानिंग्स हैं, मेरे कर्मों को भ्रष्ट तो नहीं कर रहे। मुझे इसे श्रेष्ठ करना है। एंड थर्ड थिंग, जो चीज हम यहां करने जा रहे हैं वो है टेक केयर ऑफ वेयर। टेक केयर ऑफ वेयर, ये वेयर क्या है, वेयर क्या है, डब्ल्यू वेलनेस। वेलनेस की चर्चा, हम हेल्दी भारत की बात कर रहे हैं लेकिन पहले वेलनेस की चर्चा। खुद से आपको 3 दिनों तक यहां शारीरिक रूप से एक्सरसाइज कराया जाएगा, मन की भी एक्सरसाइज होगी मेडिटेशन के माध्यम से, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिजिटल वेलनेस की भी बात होगी। डिजिटल वेलनेस बहुत बहुत जरूरी। आज सबसे ज्यादा हम चिपके हुए किसके साथ हैं, अपने मोबाइल के साथ। इतने ज्यादा चिपके हुए हैं कि कई तो अपने बाथरूम में भी उसको लेके जाते हैं और वहां से उसको पवित्र करके लाते हैं और उसी को अपने खाने के टेबल में ठीक अपने बगल में रख करके खाना खाते हैं। तो वॉशरूम से आप क्या लेकर के आए हैं, विचार करें। एक भाई थे, उनको पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत सारी उनके रिपोर्ट्स, सारी मतलब जो भी रिपोर्ट आता था उसमें पता ही नहीं चलता था कि ये इन्फेक्शन क्यों है और कैसे जाएगा। डिजिटल वेलनेस पे ही हमारे एक भाई सेशंस लेते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम खाना कैसे खाते हो। मैं कहा हाथ से खाता हूं। हाथ धोते हो? बोले हाँ हाथ धोता हूं। तो क्या खाना खाते खाते अपना मोबाइल भी यूज करते हो? कितने ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं ये शुभ कार्य कि खाना खाते खाते अपने परम साथी को भी साथ रखते हैं। चलिए इसमें हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, आप स्वयं देखें। उन्होंने कहा इसमें मोबाइल में जो आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, साथ में वॉशरूम में लेके जाते हैं, लाखों जर्म्स उसमें चिपके हुए। आप भोजन कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपके अंदर क्या जा रहा है, वो जर्म्स भी आपके अंदर जा रहे हैं। तो पेट खराब नहीं करेंगे, पेट में इन्फेक्शन नहीं होगा तो और क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। एक सुंदर सीख हम अपने जीवन से दूसरों को प्रदान करें, जब भोजन कर रहे हैं भोजन ही करें, जब जो कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट रहें, जहां आप प्रेजेंट हैं अभी भी देख लें कि क्या मैं इस सत्र में प्रेजेंट हूं या मैं अपने मन से कहीं और हूं कि मेरे विद्यालय में क्या हो रहा होगा, मेरे घर में क्या हो रहा होगा, या कल की प्लानिंग कि कल क्या करना है, या आने वाली और बातों की प्लानिंग, ऐसा तो नहीं। एक बहुत अच्छी चीज जो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है वो ये, प्रेजेंट में रहिए, जो कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। इसीलिए वेलनेस, डिजिटल वेलनेस, इस पर भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हमसे चिपका ही रहे। आपको स्वयं के साथ अब रहना है तो इसे थोड़ा सा अलग करना होगा। किया जा सकता है या ज्यादा ही प्यार हो गया है, ऐसा तो नहीं हा? जैसे स्वर्ग की अप्सरा मेनका जी ने विश्वामित्र को आकर्षित कर लिया था, वैसे ही ये मोबाइल भी हम सबको आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ। सोते सोते भी हम लगे हुए रहते हैं, सुबह से रात तक देख लें, थोड़ा सा बाहर के इंफॉर्मेशंस को यदि आप बंद करेंगे, तभी भीतर जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, वो बाहर आएगा। H, हैप्पीनेस, खुशी। हम सबको हैप्पीनेस मतलब की तलाश है ना, कि ये खुशी कहां चली गई है हमारी। आज हम देखें तो सब चीजें हमारे पास है, लेकिन खुशी कहीं गायब हो गई है। एक अंदर का जो संतोष होना चाहिए वो कहीं गायब हो गया है। कहां चली गई हमारी खुशी, क्यों रूठ गई हमारी खुशी, उसकी तलाश। और साथ ही यहां जैसे आप प्रसन्न चेहरे सबके देख रहे हैं, वही प्रसन्न चेहरा आप यहां से हमेशा हमेशा के लेके जाएंगे, ये भी मेरा दावा है। लेके जाना चाहते हैं ना इस खुशी को। खूबसूरत कहते हैं, खूबसूरत हो जाता है हमारा चेहरा मुस्कुराने से, खूबसूरत हो जाता है हमारा चेहरा मुस्कुराने से। फिर भी ना जाने क्यों लोग मुंह फुला करके बैठे रहते हैं। तो मुस्कुरा के रहना है या मुंह फुला के रहना है, मुस्कुराना ठीक है या मुंह फुलाना ठीक है, क्या अच्छा है? मुस्कुराना ना, मुंह तो नहीं फुला लेते ना कभी, तो मुंह नहीं फुलाना है। एक बच्चा था, हनुमान जी के मंदिर के बगल से गुजर रहा था, गया देखा हनुमान जी का मुंह फूला हुआ है, बोला अरे हनु क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों फूला हुआ है? बच्चे तो नहीं जानते ना हनुमान जी हैं। हनु क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों फूला हुआ है? वास्तव में अंदर से हमें हनुमान बनना है, सशक्त बनना है, बाहर से मुंह फुलाना नहीं है। कौन कौन ये कर सकता है? अंदर से सशक्त महावीर की तरह, बाहर से मुख नहीं फुलाना है। मुंह यदि फुला हुआ होगा तो फुला हुआ मुंह अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, इसलिए मुस्कान हम लेकर के यहां जाएंगे। और मुस्कान और खुशी तब आएगी, कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर सी बात कही जाती है कि जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, बाद में पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। इसीलिए खुशियां बांटिएगा, जहां भी जाएं आप खुशियां बांटें। किसी के जाने से खुशी आती है कहते हैं, और किसी के आने से खुशी आती है। मैं जहां जाऊं वहां खुशी आए, देख लें कि मेरे जाने से खुशी आती है या मेरे आने से खुशी आती है। हम अपना जीवन ऐसा बना लें। स्पिरिचुअल एजुकेशन ये है कि मैं जहां जाऊं वहां खुशी आए, मैं जहां जाऊं वहां खुशी आए। ई वेयर की मैं बात कर रहा हूं, ई इससे आपको पूरा कॉन्फ्रेंस में जो होने जा रहा है आपको बाय हार्ट हो जाएगा कि हमें क्या मिलने जा रहा है। ई इटर्नल वैल्यूज, इटर्नल वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमें अब जागृत करना है, उनकी ओर ध्यान देना है, उन्हें जीवन में लाना है। हम बच्चों को वीआईपी बनने की बात सिखाते हैं कि बच्चे ऐसा पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि वीआईपी बन जाओ, वीआईपी की तरह तुम्हें ट्रीटमेंट मिले। लेकिन उस वीआईपी के साथ एक वीआईपी की और जरूरत है, वो है वैल्यूज इन पर्सनैलिटी, वैल्यूज इन पर्सनैलिटी। जितनी वैल्यूज आपकी पर्सनालिटी में शामिल होती जाएंगी उतना आप वीआईपी बनते जाएंगे। तो ऐसे वीआईपी तो बनना चाहते हैं ना, ऐसे वीआईपी बनना चाहते हैं, बनना चाहेंगे ना ऐसे वीआईपी। जब भी अपना नाम भी लेते हैं किसी के साथ, एक एक्टिविटी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। चलिए हम सब मेडिटेशन में बैठते हैं, साइलेंस में सभी अपने साथ। तो एक छोटी सी एक्टिविटी वैल्यूज पे, आपका जो भी नाम है उस नाम का जो पहला लेटर है उससे जुड़ा हुआ कोई भी वैल्यू आप अपने नाम के आगे लगा के फिर अपने आप को अपने पड़ोसी को इंट्रोड्यूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम रुपेश है तो मैं कहूंगा आई एम रिस्पॉन्सिबल रुपेश या रॉयल रुपेश. क्लियर है ना? अपने नाम के पहले लेटर के साथ जो भी एक वैल्यू है उस वैल्यू को जोड़कर फिर अपने पड़ोसी को इंट्रोड्यूस करेंगे. कीजिए, चलिए यहां से तो शुरुआत करेंगे ना. आपके पड़ोस में जो बैठे हुए हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए उन्हें इसी रूप में. कौन सी वैल्यू है? सबने इंट्रोड्यूस किया? सबने इंट्रोड्यूस किया? अच्छा, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे को, सामने वाले में जो आपने वैल्यू देखी हो वो वैल्यू अपने सामने वाले साथी को बताइए कि आपने थोड़ी देर अपना इंट्रोडक्शन दिया लेकिन आपके चेहरे से मुझे ये आपके अंदर विशेषता दिखाई दे. कुछ दिखा? अपने पड़ोसी को बताइए, अपने साथी को. हाँ, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, आपके अंदर ये क्वालिटी, ये वैल्यू मुझे दिखाई दे. तो हरेक के पास कितने वैल्यू हो गए अभी? वैल्यूज तो बहुत सारे हैं, कितने वैल्यू हो गए अभी? अभी दो है ना. तो ये दोनों सुंदर वैल्यूज आज के इस सेशन से आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है. तालियां अपने लिए बजा लें. इस वैल्यू के साथ मुझे रहना है. और जब भी आप अपने आप को इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दरमियान जिन भी नए लोगों से मिलेंगे ना, अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस कीजिएगा. ठीक है? केवल ऐसे नहीं, आई एम रूपेश, आई एम रिस्पॉन्सिबल रूपेश. राइट? अच्छा रहेगा ना? तो इससे वैल्यूज ऐड होते चलेंगे. ये बहुत बहुत जरूरी है. इस पर बहुत विस्तार से आपको सुंदर सत्र मिलेंगे. आर रिलेशंस आज बहुत बहुत आवश्यक हो गया है. हम देख रहे हैं संबंध टूटते जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं. संबंधों को कैसे मधुर बनाएं, चाहे परिवार की बात है, साथियों की बात है, अपने कार्यक्षेत्र की बात है, कैसे हमारे संबंध बहुत स्मूथ रहें, स्वीट रहें, लोग मेरे आने का इंतजार करें, मुझसे बात करने का इंतजार करें, ये स्थिति है या कुछ और है? चिंतन करना है कैसे रिलेशंस को बहुत हम स्मूथ बनाएं, स्वीट बनाएं. सार में मैं यही कहूंगा, आपके चिंतन के लिए कुछ बातें दिया जा रहा हूं. कुछ बातें हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं, कुछ बातों को अवॉइड करना सीख जाएं और अप्रिशिएट करना सीख जाएं. यदि आप अवॉइड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, कहां कहां ये करना है अब ये आपके चिंतन पर है. फिर देखें कि कैसे संबंध सुंदर और श्रेष्ठ होते चले जाते हैं. आपको इस पर भी बहुत सुंदर सत्र मिलेंगे. जो भी मैं बातें कह रहा हूं यहां आपको, इन सब से जुड़े हुए सत्र आपको मिलने वाले हैं. जस्ट मैं आपके सामने उनके ग्लिम्स रख रहा हूं. एंड लास्ट ई, इमोशंस. हम इमोशनली आज बच्चों को देखें या स्वयं को देखें, वीक होते जा रहे हैं. किसी ने कुछ कहा, तुरंत हम उस बात को अपने हृदय में ले लेते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा डगमगा जाता है. 10 ने अच्छा कहा लेकिन एक ने कुछ कह दिया, तुम्हारा भाषण अच्छा नहीं था, या तुमने जो ये किया वो ऐसा नहीं था, ये ठीक नहीं था. उसकी बात पर हम चिंतन करते, वो 10 लोगों ने जो अच्छी बात कही वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन उस एक बात को जो किसी ने नेगेटिव कह दी उसे हम हृदय में रख लेते हैं. इतने इमोशनल हो गए हैं. जैसे हमने अपने मूड का, अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और को दे दिया है. रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें. तो स्पिरिचुअल एजुकेशन यही है, अपने मालिक खुद हम बन जाएं, अपनी जिम्मेवारी हम खुद ले लें. और ये सारी चीजें, वेयर याद हो गया? वेयर क्या क्या है? डब्लू डब्लू वेलनेस, एच एच हैप्पीनेस, ई इटर्नल वैल्यू, आर आर रिलेशंस, राइट, ई इमोशंस. हम इनके मालिक हो जाएं। इन्हीं से जुड़े हुए सुंदर बातें पूरे ही कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपको प्राप्त होंगी, और एक से बढ़कर एक ऐसे सुंदर गहन चिंतन की बात जो जीवन का निर्माण करने वाले हैं। आप यहां आए इस रूप में हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया होगा। ये 3 दिन आपके जीवन के सबसे यादगार दिवस बनने जा रहे हैं, इस बात को मैं वायदे के साथ और दावे के साथ यहां कहता हूं इस मंच से। और सबसे सुंदर जो अनुभूति आप लेकर के यहां से जाने वाले हैं वो ये कि ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साथ, जिसे आप हर सत्र में मेडिटेशन के माध्यम से अनुभव करेंगे। तो आपका ये आने वाला 3 दिन आपके जीवन को नई अनुभूतियों से भरने वाला हो, आपके लिए यादगार हो, ऐतिहासिक हो, आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने वाला हो, और एक पान का बीड़ा उठाकर जाने वाले आप बन करके यहां से जाएं कि ऐसा राष्ट्र जिसका स्वप्न हम देख रहे हैं उसे साकार करने में सबसे पहला स्थान मेरा होगा। कौन ये कहता है सबसे पहला स्थान मेरा होगा राष्ट्र को ऐसा बनाने में? उसे हाथ उठाएंगे जरा उमंग उत्साह से, मेरा इसमें सबसे हम योगदान होगा। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लें। सचमुच बहुत 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 आप सबसे मिलकर के प्रसन्नता हुई, और आपका जो उमंग है, उत्साह है, उसे देख करके यही लग रहा है कि स्वर्णिम भारत, हेल्दी और एम्पावर्ड भारत अब दूर नहीं, बस वो आया कि आया। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, धन्यवाद।
भाई जी का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कितने सरल शब्दों से और पावरफुल शब्दों से हम इस 3 दिन में अपने अंदर क्या भरने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, उसके बारे में हमें अवगत कराया कि हम सबसे पहले स्वयं को जानेंगे, फिर उस परमात्मा को जानेंगे, और सिर्फ जानेंगे नहीं उस परमात्मा को, उस ईश्वर को क्या बोला, साथ लेकर के जाएंगे। सिर्फ जानना नहीं है, उसको साथ लेकर के जाना है, क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो सिर्फ जानना नहीं है, उसको साथ ले जाना है। तो दूसरी बात, भाई साहब ने हमें विशेष अटेंशन खिंचवाया कि स्वयं पर ध्यान। आज तक हमने दूसरों पर ध्यान दिया है, लेकिन इस 3 दिन में आप क्या करेंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वयं की कमियों को, स्वयं के गुणों को, क्वालिटीज को जानेंगे। और आज जो हमारे पास सबसे अच्छा खिलौना है, कहते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है ये मोबाइल, लेकिन उस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ता है वो अध्यात्म। तो आप कोशिश करें इस 3 दिन में उस अध्यात्म से, उस परमात्मा से स्वयं को जोड़ें, और जो बाहरी जगत है उसको थोड़े समय से भूलकर अंतर जगत से जुड़ें। तो एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे आदरणीय रुपेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने सरल शब्दों से हमें इस कॉन्फ्रेंस में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में अवगत कराया। और अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भरत भूषण भाई जी उपस्थित हैं, जो हमारे ज्ञान मान सरोवर पानीपत में है, उसके आप डायरेक्टर भी हैं, और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इसके साथ साथ आप इस अध्यात्म का अभ्यास करते हुए लगभग 45 वर्षों से अधिक हो गया है। तो आपके पास कितना इस अध्यात्मिक का, स्पिरिचुअलिटी का अनुभव है? तो भी मैं आदरणीय भरत भूषण भाई जी से अनुरोध करूंगी कि अपने कुछ ग्रीटिंग्स हम सबके बीच में रखें। आदरणीय भरत भूषण भाई जी।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड रुपेश भाई, राजयोगी, तपस्वी, माउंट आबू और शांति वन के विशेष रतन, और मन संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन हरिनगर से, और इस सभा में विराजमान सर्वसम्मानित टीचर बहने, स्पिरिचुअल टीचर बहने और सभी टीचर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको आज इस नेशनल टीचर डे पर, इस शिक्षक दिवस की खूब खूब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मन में दृढ़ संकल्प था कि नेशनल टीचर डे के दिन डायमंड हॉल में बड़ा प्रोग्राम रखा है शिक्षक गण का, इसलिए हमने पानीपत बे ऑडिटोरियम में 3 सितंबर को शिक्षक दिवस रखा था, जिसमें हरियाणा माध्यमिक निदेशालय से उनके ऑर्डर से लगभग 800 टीचर आए थे और उनमें 80 शिक्षक को हमने सम्मानित भी किया था। मैं कहना चाहूंगा, शिक्षक दिवस जैसे कि आप सबको मालूम होगा, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जो कि राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, पहले वो 10 वर्ष तक 52-62 तक उपराष्ट्रपति थे, फिर 62-67 राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उनको उनके छात्र, क्योंकि उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी, छात्र सब आए, सर हम आपका बर्थडे जो है ना वो अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू भी, गवर्नमेंट भी चाहती थी, तो उन्होंने मना किया, मेरा पर्सनल बर्थडे नहीं मनाएं, अगर मनाना ही चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और तब से गवर्नमेंट ने, उनके मुख से तो छात्रों को ये बात निकली, लेकिन जब ये पब्लिश हुई तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा अच्छा, हाँ सर्वपल्ली राधा कृष्ण 15 वर्ष तक, पहले राष्ट्रपति 10 साल, फिर 5 साल, इतना ऊंचा चरित्रवान शिक्षक, क्यों ना उसके बर्थडे को हम जो है एक नेशनल टीचर डे के रूप में, और तब से नेशनल टीचर डे मनाया जाता है, तो श्री सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के लिए भी तालियां बजाएं जिन्होंने शुरुआत की। बहुत महिमा हमने रुपेश भाई से भी सुनी, मैं भी जरूर जरूर आप सबके महिमा करूंगा कि शिक्षक कितनी ऊंचा पद है। मतलब आप देखिए, परसों एक वहां डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बता रहे थे कि एक राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति की सीट पे बैठे हैं, बड़ा प्रोग्राम है, परंतु बाय द वे एक उसके शिक्षक जिसने उनको पढ़ाया था वो सभा में आए, तो वो उतर के उनके चरणों को उन्होंने स्पर्श किया और सबने देखा। जरा सोचिए कितना ऊंचा, कितनी ऊंची पोस्ट है। हमारे डिप्टी कमिश्नर पानीपत कह रहे थे कि मेरे बच्चे जहां पढ़ते हैं वो, मैं उन्हें कोई चीज वो प्रोनाउंस कर, मैं कहा ऐसे नहीं बेटे, ऐसे होता है, नहीं पापा हमारी मैम ने ये बताया था, नहीं पापा माने ही ना वो। तो मतलब आप देखिए एक शिक्षक से संबंध क्या होता है, कितना भी पेरेंट्स कहें लेकिन शिक्षक की बात एक दूसरा संबंध है। इसलिए आप सबके, अगर दुनिया में कोई सबसे अच्छा प्रोफेशन है तो वो टीचिंग का है, और आप इस प्रोफेशन में है, कांग्रेचुलेशन, बहुत सभ्य है, बहुत सुशिक्षित हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आज शिक्षक दिवस पे आप आए हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी ये सब पढ़ाना, और कोई ये पढ़ जाए क्या वो शिक्षित बन जाएगा, बन जाएगा शिक्षित? एक बच्चा पढ़ते 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 डॉक्टरेट कर लिया और उसकी फिर मैरिज हुई किसी और डॉक्टरेट से, दोनों में अर्निंग हैंड, बहुत देहाभिमान आने लगा और इतना दुर्व्यवहार पेरेंट्स से करने लगे, एक दिन पेरेंट्स को उनके दुर्व्यवहार से तंग होकर निकलना पड़ा। क्या आप उन दोनों को शिक्षित कहेंगे? कहेंगे नहीं, अरे कमाल है, उन्हें लीगली भी हर तरीके से डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दिन भर कितने लोग सलाम करते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं उनको शिक्षित नहीं कहेंगे। इसका मतलब शिक्षा तो कुछ और है, वो शिक्षा हमें जरूर प्रदान करनी है। वो शिक्षक कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं हर वर्ष, फिर भी जैसे शिक्षक चाहिए, जैसे डॉक्टर चाहिए, जैसे ऑफिसर चाहिए, जैसे इंजीनियर चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। एक गरीब पेशेंट बेचारा, पटियाला की बात है, बच्चे का ऑपरेशन कराना था। किसी ने कहा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना वो करेगा। उसका प्राइवेट भी कोई क्लिनिक था, उसके पास गया, उसने एक्सरे देखा कि इसका मैं इतना लूंगा 10,000 रुपया। वो कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं। बहुत गिड़गिड़ा, रोया अपना बच्चा, तू चला जा मेरा सिर दर्दने का। कहीं से अरेंज करके कुछ टाइम बाद, 10-15 दिन बाद जब आया, ऑपरेशन किया तो देखा उसका पेट भी चीर दिया, तो देखा कि डबल हो चुका है अब डिफेक्ट, और टाइम 1.5-2 घंटा नहीं 4 घंटा लगेगा। बीच में ही पेरेंट्स को बुला के कि सुनिए मैं अब 20,000 नहीं 40,000 लूंगा, क्योंकि इसमें डबल टाइम लगे, कहो तो मैं ऑपरेशन करूं, नहीं तो अभी पेट सिलाई कर दूं। अब आप बताइए, ही वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ही वॉज एक्सपर्ट, कितना शिक्षित है। उसके बावजूद भी जो एक मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, जो सिंपैथी होनी चाहिए, जो सद्भावना होनी चाहिए, जो सेवा का भाव होना चाहिए, वो नहीं है। कितनी जरूरत है। और राष्ट्र के निर्माता आप सब बैठे हैं, मैं केवल एक निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षक दिवस पे एक शुभ संकल्प आप सब करके जाएं। आप 45 मिनट का पीरियड पढ़ाते हैं या 40 मिनट का पीरियड पढ़ाते हैं, 5 मिनट उन्हें कोई नैतिक मूल्य की बात जरूर सुनाए, नैतिक शिक्षा की बात जरूर सुनाए। परिवर्तन होगा। हमें खुद अपने जीवन की याद है, जिन 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 टीचर्स ने कुछ ऐसी बात सुनाई आज तक नहीं भूले, हम आज तक नहीं भूले। आप ये जरूर सुनाए, अमिट छाप होगी उसकी। यहां लिटरेचर स्टॉल है, नैतिक शिक्षा की काफी किताबें हैं, दिव्य गुणों के गुलदस्ते की किताबें हैं, आप उन्हें लेके जाएं, खुद स्टडी करें। पर हर पीरियड में 5 मिनट उनको, 30 मिनट 40 मिनट सब्जेक्ट पढ़ाएं, 5 मिनट उन्हें ये जरूर सुनाएं। वो सचमुच सही माने में शिक्षित बनेंगे। जो ये संकल्प करते हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़ा करें, ऊंचा करें, ओके, कांग्रेचुलेशन, फिर आपका शिक्षक दिवस सफल हो जाएगा। इसलिए इसको जीवन में जरूर लाएं। फिर भी शिक्षा को जीवन में लाने के लिए 3 चीजों की शिक्षा छात्रों को भी दें, स्वयं को भी दें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब टीचर में देखते हैं बच्चों पे, फिर क्या असर पड़ता है। अगर शिक्षक की अश्लील फिल्में देखें, अश्लील गाने सुने, कैसे बच्चों को रोकेंगे, सोचें। हमें खुद को परिवर्तन करना है, क्योंकि हजारों लाखों की जिम्मेवारी है। अगर हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कैसे हम बच्चों को कहेंगे यूनिटी। अगर हम ही लेट उठते हैं, कैसे हम कहेंगे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसे बहुत जरूरी है इन चीजों को जीवन में लाएं। मैं लास्ट में आपको 3P की एक गिफ्ट देता हूं, वो आप छात्रों को भी दें, खुद भी जीवन में अपनाएं, तो उससे आपका जीवन बहुत महान बनेगा। व्हाट इज दैट? फर्स्ट पी इज द पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। ये एक जीवन की शैली बना लें तो जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। तो उसको जीवन में लाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए और सेकंड पी है, फिर कोशिश करें प्रेज एवरीवन, छात्रों को भी दिल से प्रशंसा करें, तो उससे वो काफी उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और लास्ट पी है फिर पोलाइटनेस, जीवन में पोलाइटनेस होगी, नम्रता होगी। फलाने ही वृक्षा नवंती गुणाने ही जना नवंती, नम्रता होगी तो सब कुछ अपना आप आता जाएगा, सारी वैल्यूज आती जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप सबको गिफ्ट मिलनी है, अब आप उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, केवल एक छोटा सा उदाहरण देते हुए पॉजिटिविटी पे। एक रहट में कुएं में 2 बाल्टियां घूम रही थी, एक हंस रही थी एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा क्यों रो रही हूं? कि मैं इसलिए रो रही हूं, वर्षों से भरकर आती हूं फिर खाली हो जाती हूं। तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूं, मैं वर्षों से खाली जाती हूं फिर भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं। सोच का फर्क है ना, कितना सुंदर किसी ने कहा, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलिए किनारे। थैंक यू वेरी मच। आप पूरा लाभ लेंगे इस 3 दिन में और पूरे सशक्त बनकर जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें कितने मोटिवेशनल बातों के साथ हमें सशक्त किया। और हम भाई जी को ये आशा दिलाते हैं कि भाई साहब ने जो कहा कि आप अपने पीरियड में जरूर 5 मिनट उन नैतिक मूल्यों की बात करें ताकि हम अपने भारत को सशक्त बना सकें। तो आज हमारे इस सेशन के वक्ताओं का एक बार हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। और इसके साथ साथ आप सब एक बार आप अपनी पीठ को जरूर थपथपाएं, क्योंकि इनविटेशन तो बहुतों को गया होगा, परंतु आप सब यहाँ पर आए और इस मौके का फायदा उठाया, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, परंतु परंतु एक शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, बच्चों के जीवन को संवारने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम इस सेशन का एंड 2 मिनट उस परमात्मा की याद में करेंगे, और उसके बाद आपको रुपेश भाई जी ने आपके नाम का वैल्यू का गिफ्ट तो दे दिया, परंतु उस ईश्वरीय सौगात को आप जरूर परमात्मा के घर में आए हैं, उसको जरूर लेकर के जाएंगे। परंतु उससे पूर्व हम 2 मिनट उस परमात्मा को याद करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं।
Good girl.